ओम शांति। भारत पाक की युद्ध के कारण कुछ अव्यवस्थाएं और अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके आधार से हमें 6:30 बजे के बाद होल से उठते ही भोजन पर जाना है, क्योंकि कल की तरह ब्लैकआउट हो जाएगा 7:30 के अंतराल में। तो इसलिए हमें क्लास में से 6:30 जैसे ही पूरा होगा सीधा भोजन पर जाएंगे और भोजन के बाद अपने कमरों में पहुंच जाएंगे। अपनी सब लाइटें बंद हो जाएंगी और अपने डिवाइस भी हमको बंद रखने होंगे। अभी हमारे बीच में वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी रंजना बहन जी विराजमान हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं। आप विगत 49 ईयर से बाबा की ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रही हैं और 48 ईयर से आप ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित हैं। आप गुजरात के सूरत और वलसाड़ क्षेत्र की संचालिका हैं। आप गुजरात जोन की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी अनुभवी वक्ता को हम अपने बीच में पाकर हर्षा रहे हैं और उनका पुनः स्वागत करते हैं और उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि योग की गहराई की सूक्ष्म बातों पर हमें प्रकाश डालें। वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी रंजना बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विशेष हम सभी यहाँ पर योग तपस्या करने के लिए आए हैं और उसमें भी पांडव भवन की आकर्षण सबको रहती है। तपस्या पथी तो शांतिवन में भी होती है, ज्ञान सरोवर में भी होती है और यहाँ पांडव भवन में भी होती है। लेकिन यहाँ की विशेष आकर्षण क्यों रहती है? क्योंकि यह वो भूमि है जो हमारे साकार बाबा की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, हमारी दादियों की तपस्या भूमि है। तो विशेष इस स्थान के जो वाइब्रेशंस है वही सभी को खींचते रहते हैं। कई बार बाबा मुरली के अंदर भी कहते हैं कि एक समय आएगा जब इस पांडव भवन के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। और आज हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि बाबा के बच्चों के सिवाय बाहर वालों को यहाँ पर प्रवेश नहीं है और नेचुरल है। उस कारण से भी यहाँ के वाइब्रेशंस पावरफुल रहते हैं। तो आज का जो हमारा अभी का विषय है कि हम योग की गहराई का अनुभव कैसे करें या योग का गहराई से अनुभव करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम सभी चाहते तो हैं कि जब हम बाबा को याद करने बैठे तो ऐसा योग में हम खो जाए, ऐसा मस्त हो जाए कि हमें और कोई सूद बूद ना रहे और कोई बाहर की बातें हमें याद न आए। ये चाहना तो सबकी होती है, लेकिन कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। चाहते हुए भी हम वो अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो विशेष योग के लिए, क्योंकि बाबा भी हर रोज की मुरली के द्वारा योग के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि योग का सब्जेक्ट हमारा पावरफुल होना चाहिए। और जितना हमारा योग शक्तिशाली होगा उतना और सब्जेक्ट भी शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि योग के आधार से ही हम बाबा की जो भी शिक्षाएं हमें मिलती है उन शिक्षाओं को जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं। और बाबा तो हमें रिजल्ट भी दे देते हैं। एक हफ्ते पहले की मुरली को याद करो तो बाबा ने कहा अर्जुन बच्चे योग में बहुत कच्चे हैं, रिजल्ट भी बाबा देते रहते हैं। तो योग को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? योग को जोड़ भी कहते हैं, संबंध भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, अलग अलग नाम बाबा देते हैं। लेकिन जहां हमें योग का गहराई से अनुभव करना है तो सबसे पहले तो हमें संबंध के रूप में योग को लेना है, क्योंकि जितना हमारा बाबा से संबंध अति समीप का होगा, गहरा होगा, तो हम योग का भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो विशेष योग को शक्तिशाली बनाने के लिए संबंध की आवश्यकता है। राजयोग शिविर के लेशन के अंदर भी हम कहते हैं ना, योग का आधार है संबंध, स्नेह और स्मृति। तो जितना हमारा बाबा के साथ गहरा संबंध है, स्नेह भरा संबंध है, उतने हमें बाबा की याद सहज आती है। लौकिक संसार के अंदर भी देखो तो जिसके साथ हमारा ज्यादा स्नेह होता है उतने हमें उसकी याद ज्यादा आती है। या तो जहां से हमें प्राप्ति होती है तो वहां हमें उसकी याद सहज आती है। तो ऐसे ही बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना, जिसके लिए बाबा की एक अव्यक्त वाणी चले जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके उस संबंध का अनुभव करो। गायन तो करते हैं सर्व संबंधों का, माता पिता बंधु सखा, भक्ति में भी गायन किया, बाबा के बच्चे बन करके भी हम कहते हैं वो हमारे माता पिता है, टीचर है, गायन तो करते हैं, लेकिन उसका अनुभव कहाँ तक है? और यहाँ पर अनुभव की बात है कि जो हम सर्व संबंधों का गायन करते हैं उसका अनुभव करें, और जितना हम उसका अनुभव करेंगे तो नेचुरल हम सारे दिन के अंदर हर कर्म करते हुए बाबा के साथ का अनुभव कर सकेंगे। और उसमें बाबा ने यहां तक कहा कि अगर कोई भी संबंध बाबा से जोड़ने में कमी होंगी, या तो जो भी संबंध हमने बाबा से नहीं जोड़ा होगा, तो जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आएंगी तो उस संबंध के लिए हमारी बुद्धि वो देहधारी संबंध की तरफ जाएंगी। और इसलिए बाबा के साथ ये सर्व संबंध जोड़ना ये बहुत आवश्यक है। तो जितना हमारा बाबा के साथ गहरा संबंध है, जितना हमारा बाबा के साथ प्यार है, उतना हमें बाबा की याद भी सहज आएंगी। लेकिन उस याद के लिए सबसे पहली बात है कि हमें तीन स्मृतियों का दरवाजा बंद करना है। कौन सी तीन स्मृति के दरवाजे को बंद करना है? जब हम योग में बैठते हैं तो सबसे पहला दरवाजा है देह की स्मृति का दरवाजा, अर्थात जब हम याद में बैठते हैं तो क्या ये जरूरी है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं धनवान हूँ, इसकी कोई आवश्यकता है? तो सबसे पहला स्मृति का दरवाजा है देह की स्मृति का दरवाजा, अर्थात देह के पोस्ट पोजीशन को हम भूल जाए और मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, केवल उस स्मृति में स्थित हो जाए। तो सबसे पहला है देह की स्मृति के दरवाजे को बंद करें। दूसरा दरवाजा है देह के संबंधों की स्मृति का दरवाजा, कि जो भी हमारे दैहिक संबंध है उस दैहिक संबंधों को भी हम भूलें, जिसके लिए गीता के महावाक्य, हे अर्जुन तो देह और देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर और मुझे याद कर। तो वहां पर भी देह के संबंधों को भी भूलने की बात बताई है, क्योंकि जहां तक इस देह की स्मृति है, देह का संबंध भौतिक जगत के साथ है। मैं डॉक्टर हूं, पेशेंट याद आएंगे, मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट याद आएंगे, मैं पिता हूँ, बच्चे याद आएंगे। तो देह का संबंध भौतिक जगत के साथ है, इसलिए जब आत्मा के स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा के सर्व संबंध केवल एक परमात्मा के साथ है, तो हमें परमात्मा की याद सहज आएगी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जहां देह के संबंधों को भूलने की बात होती है पर जब हम याद में बैठते हैं तभी हमारे कोई ऐसे भी संबंधी है जिसके साथ हमारा बहुत प्यार था, बहुत घनिष्ठ संबंध था, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो कब से देह छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन कभी कभी जब याद में बैठते हैं तो वो स्मृति में चले जाते हैं जिनका अस्तित्व अब इस दुनिया में है ही नहीं, और हम उसकी यादों में खो जाते हैं, जिसको कहते हैं मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। तो देह के संबंधों की स्मृति, तो जो भी देह के संबंध है उस संबंध को भी हम भूले और एक परमात्मा की याद है। और तीसरा दरवाजा है देह के पदार्थों की स्मृति का दरवाजा, अर्थात जो भी हमारे पास साधन सामग्री है, जो भी इस भौतिक जगत के पदार्थ है, उसकी भी स्मृति को भूलना। उसमें भी कब क्या होता है, मान लो हम मार्केट में गए हैं, कोई शोरूम के अंदर बहुत अच्छी कोई चीज हम देखते हैं, वो हमको पसंद आ जाती है, लेकिन जब उस चीज की प्राइस हम पूछते हैं तो बहुत ज्यादा प्राइस है, हम समझते कि हम इसको ले नहीं सकते हैं, छोड़ देते हैं और आ जाते हैं। लेकिन जब बाबा के कमरे में आकर के बैठते हैं, याद में बैठते हैं, बुद्धि से उस शोरूम में पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी चीज थी, लेने जैसी थी, लेकिन प्राइस ज्यादा थी, ले नहीं पाए, जिसको विदेश में कहते हैं विंडो शॉपिंग, कि बल हमने लिया नहीं लेकिन देखा है तो हमारी बुद्धि वहां चली जाती है। तो तीसरा है देह के पदार्थों की स्मृति का दरवाजा बंद करना। अब ये तीनों ही दरवाजे जब बंद करते हैं तब फिर वन वे ट्रैफिक शुरू होता है, अर्थात बुद्धि एक बाघ की तरफ झूठती है, लेकिन फिर भी वहां हमें अटेंशन रूपी पहरेदार को बिठाना होगा, क्योंकि बुद्धि कैसी है, मन कैसा है, बहुत जल्दी वापस आ जाता है। तो अटेंशन रूपी पहरेदार को जब बिठाएंगे तो वन वे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, मैं और बाबा और कोई भी बातें नहीं। तो इस रीति से सबसे पहली बात है कि योग का गहराई से अनुभव करने के लिए ये तीन स्मृतियों का दरवाजा बंद करें। दूसरा है कि जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो इस संसार से पूरा वैराग हो। कहा ही जाता है त्याग न टिकेरे वैराग्य के बिना। तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, जो बाबा कहते हैं दुनिया मरी पड़ी है, या तो कभी कभी बाबा कहते हैं ना दुनिया से वैराग्य दिलाने के लिए कि पुरानी दुनिया है, दुखदाई दुनिया है, खत्म होने वाली दुनिया है, ताकि हमारा इससे वैराग्य होता जाए। जिसके लिए बाबा कहते हैं श्मशान जहां सब मरे पड़े हैं, अर्थात जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के अंदर दिखाते हैं कि जब कयामत का समय होता है तो आप जानते हैं मुस्लिम लोग जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को कब्र में दफनाते हैं, जो पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं, और वो समझते हैं कि जहां उसको दफनाते हैं जिस व्यक्ति को, आत्मा भी वहीं पर रहती है। और अंत में जब कयामत का समय होता है तब खुदा ऊपर से आते हैं और एक एक को कब्र से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये वही कयामत का समय है जहां एक एक मनुष्य आत्माएं देह अभिमान की कब्र में सोई हुई है, आत्मज्ञान से वंचित है और देहभान की कब्र में सोई हुई है। खुदा ऊपर से आया हुआ है, एक एक को देह अभिमान की कब्र से बाहर निकाल रहे हैं और आत्मज्ञान दे करके सुरक्षित कर रहे हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो ये दुनिया को श्मशान समझे, श्मशान से कभी किसी का मोह नहीं होता, श्मशान से हमेशा वैराग्य ही होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि दुनिया मरी पड़ी है, श्मशान है, तो इस दुनिया को क्या याद करना है। तो जब हमारा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा तो हम बाबा की याद में टिक सकेंगे। तीसरी बात है कि बाबा को याद करने के लिए या याद को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें विचार सागर मंथन करने की आदत चाहिए। जितना हमारा विचार सागर मंथन होगा, अर्थात पूरा दिन जितना हम ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं और बुद्धि के अंदर ज्ञान का ही चिंतन चलता है, तो जब हम यहाँ आकर के बैठते हैं तो वही चिंतन के आधार पर हम बाबा की याद में एकाग्र हो सकते हैं। अगर हमें विचार सागर मंथन करने की आदत नहीं है, विचार सागर मंथन करने का संस्कार नहीं है, तो नेचुरल है मन के अंदर कोई न कोई व्यर्थ बातों का चिंतन चलता है। फिर जब याद में आकर के बैठते हैं तो क्या निकलेगा? वही जो व्यर्थ चिंतन किया है वही निकलता है। इसलिए जितना हम विचार सागर मंथन करते हैं और उसमें भी देखो बाबा मुरली के द्वारा हमें तीन प्रकार के नशा चढ़ाते हैं। सबसे पहला है रूहानी नशा, अर्थात मैं आत्मा तो हूं पर मैं कौन सी आत्मा हूं, जिसमें रोज बाबा हमें नए नए स्वमान देते हैं, रोज नया नया टाइटल बाबा हम बच्चों को देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो, कितने ऊंचे टाइटल, कभी कभी तो बाबा कितना ऊंचा, तुम सब कौन हो, मास्टर भगवान हो, कितना ऊंचा स्वमान बाबा हमें देता है। तो एक तो है रूहानी नशा, दूसरा है ईश्वरीय नशा कि मैं किसकी संतान हूं, ईश्वर की संतान। जैसे आज की मुरली के द्वारा ही बाबा ने क्या कहा, जिसको सारी दुनिया ढूंढती है और वो भगवान हमारा बाप बन करके हमको पढ़ाता है, कितनी ऊंची बात है। तो दूसरा है ईश्वरीय नशा और तीसरा है दैवी नशा, अर्थात हम ही देवी देवता बनने वाले हैं, हम ही बाप दादा की आशाओं को पूरा करने वाले हैं। और वो दैवी नशा, वो देवताई दुनिया की स्मृति हमें रोज रोज दिलाते हैं कि वो सतियों की दैवी दुनिया के अंदर कैसे हम देवी देवता के रूप में पार्ट प्ले करते हैं। तो तीन प्रकार के नशे की बातें बाबा हमें मुरली के द्वारा सुनाते हैं, रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा और दैवी नशा। और जितना ये नशा हमको चढ़ता है तो हम उसके आधार पर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। तो बाबा मुरली के द्वारा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपी कौन है? हम ही तो है, अगर बाबा हमसे पूछे तो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, और हम कहते हैं हम गोप गोपी हैं वो, तो क्या हमको वो नशा रहता है? अतीन्द्रिय सुख का नशा हम अनुभव करते हैं। और अतीन्द्रिय सुख का नशा अर्थात देह की कर्मेंद्रियों से परे अति इंद्रिय, माना आत्मा की इंद्रिय, आत्मा की इंद्रिय मन बुद्धि। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि जिस आनंद का अनुभव करती है, जिस सुख का अनुभव करती है, वो अतीन्द्रिय सुख का नशा। तो जितना हम ये तीन प्रकार के नशे का अनुभव करते हैं तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो तीसरी बात है विचार साकर मंथन करने की आदत। चौथी बात बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तीन पर को छोड़ो, एक पर को धारण करो। बाबा की कव्यक्त वाणी चली है ना, तीन पर को छोड़ो, बीच में वो अव्यक्त वाणी चली भी थी, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। ये तीन पर को छोड़ो, क्योंकि अगर हम जितना दूसरों का पर चिंतन ही करते रहते हैं तो पर चिंतन करने वाला कभी स्व चिंतन कर नहीं सकता है, और स्व चिंतन नहीं तो उसका योग बाबा से लग नहीं सकता है। जितना हम पर चिंतन करते हैं तो पर चिंतन माना क्या, दूसरों की निंदा ही तो करते हैं, दूसरों की बुराइयों का ही तो वर्णन चिंतन करते हैं। तो दूसरों की बुराइयों का चिंतन करके फिर हम बाबा के सामने आकर के बैठे, बाबा आप कितने अच्छे हो, कितना प्यारे हो, क्या हम बाबा में लीन हो जाएंगे, क्या बाबा हमारी महिमा से खुश हो जाएंगे? नहीं। जैसे मान लो हमारा कोई नेबर है, पड़ोसी है, और उसका बेटा है, और उस बेटे की हम ग्लानी करते, निंदा करते, बुराई करते हैं, और उसकी बुराई करके फिर उसके माता पिता के आगे जा करके हम उसकी महिमा करें, माँ बाप खुश होंगे कि हमारे बेटे की बुराई कर रहा है और हमारे पास आकर के अब महिमा करता है हमारी, वो खुश होंगे माँ बाप? नहीं। ऐसे ही सभी मनुष्यात्माएं परमात्मा की संतान है, तो दूसरों की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके फिर हम उनके सामने जा करके बाबा आप कितने अच्छे हो, बाबा खुश होगा? नहीं। तो पर चिंतन, दूसरा है पर दर्शन, दूसरों को देखना, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, किसका स्वभाव कैसा है, किसका संस्कार कैसा है, तो दूसरों को ही देखते रहेंगे तो अपने को कब देखेंगे? और बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा, कल भी कहा, आज भी कहा, अपने को देखो, अपने से पूछो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, खुद को देखना है। तो अगर हम दूसरों को ही देखने में व्यस्त है तो स्वयं को कब देख सकेंगे? और तीसरा परमत, जो हमें द्वापर से मिलती आई है, द्वापर से लेकर के हम परमत, दूसरों की मत पर ही चले हैं, और दूसरों की मत पर चले हैं इसी कारण तो हम कहां से कहां पहुंच गए, कलयुग अंत में आकर के पड़े हैं, तमो प्रधान बन गए हैं, तो दूसरों की मत पर चलते हैं, इसलिए ना, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, पर मत को छोड़ो, श्री मत पर चलो। कल की मुरली में कहा श्री मत पर चलो कि बाबा की श्री मत हमें क्या कहती है। तो पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, तीन पर को छोड़ो और एक पर को धारण करो, और वो एक पर है परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना। जितना हम दूसरों पर उपकार करेंगे उसमें अपना उपकार समाया हुआ है। हमने द्वापर से लेकर के परमात्मा की कितनी ग्लानी किया, फिर भी बाबा आकर के हमारे ऊपर उपकार करता है ना। बाबा ने हमारी कमियों को देखा, बाबा ने फिर भी हम बच्चों को अपना बना करके इतनी ऊंची शिक्षाएं देख करके हमको क्या से क्या बनाया है। तो तीन पर को छोड़ो और एक पर को धारण करो। तो चौथी बात है ये तीन पर छोड़े, एक पर को धारण करें। पांचवी बात है कि हमें स्वयं को साइलेंस में जाने की इच्छा हो। जब तक स्व की वो इच्छा नहीं है कि मुझे शांति का अनुभव करना है और साइलेंस की स्थिति का अनुभव करने की खुद की इच्छा नहीं होगी, ठीक है किसी ने कहा तो आके बैठ गए, ठीक है रोज चलता है 6:30 से 7:30 योग तो चलो बैठना है तो बैठ गए, तो वो ऐसे बैठ जाते हैं लेकिन अपनी खुद की अंदर से वो इच्छा नहीं है तो फिर हम वो योग की गहराई का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वयं का इंटरेस्ट चाहिए, अपनी स्वयं की इच्छा चाहिए, और तभी हम वो साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए भी अंतर्मुखता, उसके लिए चाहिए आत्माभिमानी स्टेज, और वो आत्माभिमानी स्टेज के अंदर भी चार स्थिति होती है, जिसके अंदर सबसे पहला जो है तो वो है शरीर से न्यारा होने का अभ्यास। इस देह से न्यारा मैं आत्मा हूं, जो बाबा कहते हैं आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, लेकिन वो आत्मा अनुभव करना सारे दिन के अंदर कर्म करते हुए भी, वो कर्म करते हुए मैं आत्मा इस देह के माध्यम से ये कर्म करा रही हूँ। आत्मा मालिकपन की स्थिति में रहे और कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, कर्म योगी की स्टेज हो। दूसरा जो है जिसके अंदर अव्यक्त स्थिति का अनुभव, तीसरा है अशरीरी स्थिति का अनुभव और चौथा है निराकार स्थिति का अनुभव। तो जब हम आत्माभिमानी बनते हैं तभी हम ये चार स्टेजेस का अनुभव कर सकते हैं। अशरीरी स्थिति, जब तक हम वो अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं तब तक हम हल्केपन का, वो लाइट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उस स्थिति का अनुभव करना ये भी बहुत आवश्यक है। परंतु इन सब के साथ साथ मुख्य बात है जो हमारा विशेष इस मास की थीम चल रही है, प्यूरिटी। प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। तो जब तक हमारा पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है तब तक वो आत्माभिमानी स्टेज भी नहीं बन पाती है। जैसे आज की मुरली के अंदर ही बाबा का जो अव्यक्त इशारा था जिसमें बाबा ने क्या कहा, पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है, पवित्र कर्म ब्राह्मणों का धंधा है, पवित्र संबंध और संपर्क ये हमारी रॉयल्टी है। तो इतना बाबा हमारा पवित्रता के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। तो जितना हम पवित्रता का भी गहन अभ्यास या पवित्रता की भी डीपली अगर हम अपने जीवन के अंदर धारणा करते हैं तो हम जो योग का गहराई का अनुभव करना चाहते हैं, अर्थात मैं और मेरा बाबा और कोई मन के अंदर दूसरा संकल्प न हो, बस हम बाबा की यादों में खो जाए, ये देह की स्मृति भी न रहे और कोई एक ही संकल्प के अंदर हम स्थित हो जाते हैं, जब ऐसा अनुभव करते हैं योग की गहराई का अनुभव, तो वो योग की गहराई का अनुभव जब हम योग से उठते हैं तो भी हम जैसे आवाज से परे रहेंगे, आवाज में आने की दिल नहीं होंगे। और ऐसा जब योग का अनुभव करते हैं कभी हम थकावट फील नहीं करते हैं। तो विशेष योग का गहराई से अनुभव करने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना ये बहुत आवश्यक है। ओम शांति।
ओम शांति। जब हमारी रंजना दीदी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को समराइज कराया जा रहा है। जितनी भी हमारी योग के ऊपर गहराई की क्लासेस वरिष्ठ भाई बहनों ने कराई हैं, उनका जैसे जूस बना के पिला दिया, ऐसे ही अनुभव कर रहे हो ना? हाँ, तो हम दीदी का एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने नीचे से खास हमारे लिए आए हैं और ऐसी सिचुएशन में हमारे ऊपर इतनी सारी वरदानों की, स्मृतियों की और खजानों की बहुत बरसात की है। तो हम दीदी का इन सब बातों को पालना करते हुए आभार व्यक्त करने का संकल्प लेते हैं और पुनः एक हाथ की ताली से दीदी का शुक्रिया करते हैं। थैंक यू।
आवाज़ से मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया दिखता